بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ آج اب سورہ واقعہ کی آتما کو شانتی پردان کرنے والی پہلی سے لے کر سولہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ جب وہ گھٹت ہونے والی مہان گھٹنا ارتھات قیامت گھٹ جائے گی اور اس کے گھٹت ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ گھٹنا الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی۔ اس سمے دھرتی کو بھوکمپ کے زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ ٹوٹ کر چور چور ہو جائیں گے، تو وہ بکھری ہوئی دھول ہو کر رہ جائیں گے اور تم لوگ تین پرکار کے ہو جاؤ گے، تو دہنے ہاتھ والے، اور کیا کہنا دہنے ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیسے دربھاگی ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہی ہیں، وہی اللہ کے نکٹ ورتی ہیں، وہ سورگ کے نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، اگلوں میں سے تو بہت سے ہوں گے اور کچھ پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، جو موتی اور یاقوت جڑے تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، کارکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ آج گروار ہے، ستمبر کی 8، سفر کی 11 اور شہری ورماہ کی 17 تاریخ۔ ایک گھنٹے تک چلنے والے اس کارکرم کا آرمبھ وگت کی ہی بھاتی ہم وشو سماچاروں سے کریں گے۔ وشو سماچاروں کے بعد آپ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم سنیں گے۔ راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم کے اپرانت دو ساپتاہک کارکرم پیش کیے جائیں گے، آج کی بات اور سفل مہیلائیں۔ تو شوتاؤ، یہ تھی ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا۔ آپ ہمارے ان کارکرموں کو ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، parstoday.com/hi۔ ان کارکرموں پر اپنی پرتیکریا کے لیے آپ ہمیں ای میل کے مادھیم سے سمپرک کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@wsiribir۔ اور اب کچھ ہی چھڑوں میں وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج کے پرمکھ سماچاروں کا سارانش۔ ناصر کنانی نے کہا ہے کہ 17 شہری ور کی ایتیہاسک گھٹنا کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ حشدو شابی نے آتنکوادی گٹ داعش کے خطرناک شڈینتر کو وفل بنا دیا۔ امریکی نیتاؤں اور وہاں کے ادھیکاریوں کے بیچ سمبند خراب ہو رہے ہیں۔ اشوک گہلوت کا کہنا ہے کہ بھارت میں گرہ یدھ کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اب آپ وستار سے قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے کہا ہے کہ 17 شہری ور کی گھٹنا کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ناصر کنانی نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ 17 شہری ور کی ایتیہاسک گھٹنا کبھی بھی ایرانی راشٹر کی یاد سے نکل نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا میں شہید ہونے والوں کا خون ہمیشہ ہی ایران کے اتہاس میں دمکتا رہے گا۔ کلانی کے انوسار اس دن تہران میں ایران کے نردوش لوگوں کے جن سنہار نے تتکالین شاہی سرکار کے چہرے پر پڑی نقاب کو ہٹا دیا۔ یہ شاسن ایران میں امریکہ اور برٹن کے شڈینتروں سے استتو میں آیا تھا۔ 17 شہری ور کے جن سنہار کے باوجود شاہ کی سرکار کو امریکہ اور برٹن کا سمرتھن جاری رہا۔ یاد رہے ایران کی اسلامی کرانتی کی سفلتا سے کچھ پہلے 17 شہری ور سن 1357 ہجری شمسی ارتھات 8 ستمبر سن 1978 کو شاہ کی تتکالین سرکار نے جنتا کے ورودھ بل کا پریوگ کیا، جس میں بڑی سنکھیا میں نردوش لوگ مارے گئے تھے۔ ایران کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ راشٹرپتی سید ابراہیمی رئیسی نے इस बात पर बल दिया है कि पाबंदियां हटाने के लिए जारी बातचीत में वरिष्ठ नेता द्वारा निर्धारित रेड लाइनों को नजरअंदाज न किया जाए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीन अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की इस बात पर ताकीद है कि पाबंदियां हटवाने के लिए जारी बातचीत में वरिष्ठ नेता द्वारा निर्धारित रेड लाइनों को हरगिज पार न किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ताकार टीम पूरी संजीदगी और मजबूती से इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने विशेषज्ञ असेंबली में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला और असेंबली के सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इलाके में इस्लामी गणतंत्र ईरान को हाशिए पर डालने और नया राजनीतिक सेटअप खड़ा करने की लाख कोशिशें की, मगर उसे कामयाबी नहीं मिली। इराक के हश्दुश शाबी ने दाइश की उस योजना को विफल बना दिया जिसमें जायरीन की हत्या करने की तैयारी थी। इराक के संचार माध्यमों ने बताया है कि देश के स्वयंसेवी बल हश्दुश शाबी ने आतंकवादी गुट दाइश के खतरनाक षड्यंत्र को विफल बना दिया। इस बार दाइश के आतंकवादी इराक के चार प्रांतों में इमाम हुसैन के जायरीन के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाइयों की योजना को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। हश्दुश शाबी ने गुरुवार को बयान जारी करके ऐलान किया है कि इस वर्ष के अरबईन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से उसने लब्बैक या हुसैन शीर्षक के अंतर्गत अभियान आरंभ कर रखा है। इसी अभियान के अंतर्गत एक झड़प के दौरान दाइश के कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया जो इराक के चार प्रांतों करबला, बाबिल, अलमुसन्ना और अद्दीवानिया में आतंकवादी कार्रवाई करके बड़ी संख्या में जायरीन की हत्या करना चाहते थे। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों ने स्वीकार किया है कि वे करबला जाने वाले पद यात्रियों की बड़े पैमाने पर हत्या करने की योजना तैयार कर चुके थे जिनको व्यावहारिक रूप दिया जाना था। इसराइल ने फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध को गजा तक सीमित रखने की बड़ी कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। वेस्ट बैंक के पूरे इलाके में प्रतिरोध की चिंगारी लावा बन चुकी है और अब इस इलाके पर नजर रखने के लिए इसराइली ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइली सेना ने कहा है कि वेस्ट बैंक में मौजूद छावनी में ड्रोन विमान तैनात कर दिए गए हैं। इन ड्रोन विमानों पर हमला करने की भी क्षमता होगी। पेंटागन के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि देश के नेताओं और सैन्य अधिकारियों के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं। पेंटागन के लगभग 12 पूर्व अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर नेताओं और सैन्य अधिकारियों के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो देश के भीतर विभाजन की स्थिति खतरनाक हो जाएगी। एक बयान में 8 पूर्व रक्षा मंत्रियों और 5 सेना प्रमुखों के हस्ताक्षर हैं। इस बयान में कहा गया है कि सिविल सोसाइटी और सेना के बीच संबंध बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बयान पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों ने कहा है कि देश के दोनों राजनीतिक दलों के बीच दुश्मनी बढ़ गई है और सेना के माहिर अधिकारी बड़ी ही अजीब स्थिति से जूझ रहे हैं। क्यूबा के विदेश उपमंत्री ने बताया है कि पिछले 6 दशकों से उनका देश सरकारी आतंकवाद का शिकार बना हुआ है। कार्लोस कासियो ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने क्यूबा के नाम को आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की सूची में डालकर वास्तव में अन्यायपूर्ण काम किया है। एसोसिएटेड प्रेस को दिए साक्षात्कार में क्यूबा के विदेश उपमंत्री ने कहा, बहुत खेद की बात है कि अमेरिका अपने किसी भी गैर कानूनी और असंवैधानिक काम पर पछतावा नहीं करता। उन्होंने कहा कि 60 वर्षों तक क्यूबा की कई पीढ़ियों को अकारण दंडित किया जा रहा है। क्यूबा पर दशकों से लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ कई बार अमेरिका के भीतर से भी आवाजें उठ चुकी हैं। दिसंबर 2011 में अमेरिका के 114 सेनेटरों ने सरकार से मांग की थी कि क्यूबा पर लगे प्रतिबंधों के मुद्दे को उनकी सरकार अपनी वरीयता में शामिल करे। यूनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोप में एक बार फिर युद्ध हो सकता है। निकोस डेंडियास ने कहा है कि तुर्की की ओर से हमले की स्थिति में यूनान अपनी रक्षा स्वयं ही करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में यूरोप में यूक्रेन जैसा युद्ध आरंभ होने की संभावना पाई जाती है। यूनान की सरकार ने नेटो, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को पत्र भेजकर ये मांग की है कि वे आधिकारिक रूप से तुर्की के राष्ट्रपति के तनाव बढ़ाने वाले बयान की निंदा करें। यूनान के विदेश मंत्री का कहना है कि तुर्की के व्यवहार के बारे में नेटो, यूरोपीय संघ और राष्ट्र संघ के महासचिव सबको अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। उनका कहना था कि इस मामले में गंभीरता न दिखाने से यूक्रेन युद्ध जैसे एक नए युद्ध की संभावना मजबूत होती जा रही है। निकोस के अनुसार हम वास्तव में ऐसा नहीं चाहते हैं, किंतु हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में जो हालात हैं उनको अगर नहीं बदला गया तो हम गृह युद्ध की ओर चले जाएंगे। कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत का कहना है कि जाति और धर्म के नाम पर नफरत को फैलाने से यदि नहीं रोका गया तो फिर देश गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। पीटीआई के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगाह किया है कि अगर जाति व धर्म के नाम पर नफरत फैलाने को नहीं रोका गया तो फिर गृह युद्ध हो भी सकता है। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले संवाददाताओं से कन्याकुमारी में बात करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सद्बुद्धि आए और वे हालात को समझ सकें। भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जो शुरू हो चुकी थी, आज की सुबह इस यात्रा की पहली सुबह थी। यात्रा की शुरुआत देश के दक्षिणी छोर पर बसे कन्याकुमारी में त्रिवेणी संगम में हुई, जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मेल होता है। 7 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू होने वाली यह यात्रा 150 दिनों तक चलेगी और जम्मू व कश्मीर पहुंचकर समाप्त होगी। पार्टी की कोशिश है कि इससे वो आम लोगों के दिलों पर दस्तक दे। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण किए गए पद के बारे में,
10 डाउनिंग स्ट्रीट, ब्रिटेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर,
और फिर बात करेंगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका से किए गए आह्वान के बारे में,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने परस्पर,
और अंत में चलेंगे भारत, जहां ईरान के सांस्कृतिक केंद्र में आशूरा आंदोलन के संबंध में हुई एक संगोष्ठी के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत आशूरा।
तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री और उनके सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में। कड़े संकट और चुनौतियों की लंबी सूची इन हालात में देश की बागडोर संभाल रही है लिज ट्रेस। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं लंदन से IRIB के संवाददाता मुश्तबा कासिम ज़ादे, हमारे साथी अहमद अब्बास की आवाज में।
10 डाउनिंग स्ट्रीट, ब्रिटेन्स
ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री, जिन्होंने आर्थिक संकट, सामाजिक समस्याओं और सरकार पर जनता के अविश्वास के हालात में देश की बागडोर संभाली है, अब अपना मंत्रिमंडल तैयार करने की कोशिश में व्यस्त हो गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला भाषण देते हुए बोरिस जॉनसन के कार्यों की तारीफ की और देश के संकट की बात की। उन्होंने कहा कि हमें गहरे संकट का सामना है। इस संकट का एक भाग यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से है और एक भाग कोरोना की महामारी की देन है। विशेषज्ञों, जनता और कम आमदनी वाले वर्गों का कहना है कि इस समय देश का एक बड़ा संकट ऊर्जा का संकट है, जिसके चलते ऊर्जा का खर्च इतना बढ़ गया है कि साल गुजरने तक यही प्रक्रिया चलती रही तो पेंशन लेने वालों की पूरी साल की आधी आमदनी ऊर्जा पर ही खर्च हो जाएगी। बहुत से परिवार जाड़े के मौसम में इस दुविधा में रहेंगे कि अपना घर गर्म करें या अपने घर के लोगों के लिए खाने पीने की चीजों का इंतजाम करें। ये निश्चित रूप से संकट है।
Obviously you got the energy crisis.
गैस का संकट इस समय परिवारों को बहुत परेशान कर रहा है। बेरोजगारी और कम तनख्वाह से भी लोग बहुत परेशान हैं। सरकार अब तक कोई भरोसेमंद समाधान पेश नहीं कर सकी है। कई हफ्तों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के सारे इंडिकेटर्स लाल रंग में पहुंच गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पिछले 40 साल में अद्वितीय है, जबकि विकास दर के हिसाब से देखा जाए तो ब्रिटेन की हालत काफी खराब चल रही है। ब्रिटेन इस समय आर्थिक रूप से अपने बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है, जो कि देश के सामने बड़ी चुनौती है।
Pushed inflation into double digit.
यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का मतभेद भी बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। अब तक ये मुद्दा हल नहीं हो पाया कि ब्रिटेन किस शैली पर यूरोपीय संघ से अलग हो और अलग हो जाने के बाद दोनों के बीच संबंध किस रूप में जारी रहें। इस बीच स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में अलगाववाद जोर पकड़ने लगा है। स्कॉटलैंड के नेता कहते हैं कि स्कॉटलैंड के भविष्य का फैसला जनता करेगी, लिज ट्रस हमारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकती। बोरिस जॉनसन को भी यह अधिकार नहीं था। स्वाधीनता के बारे में कोई भी फैसला स्कॉटलैंड की जनता के जरिए होगा। ब्रिटानी प्रधानमंत्री के सामने दूसरी बड़ी चुनौती बढ़ती असुरक्षा, डकैती, चाकू से हमले की घटनाएं हैं। 10 साल में ये घटनाएं दुगनी हो गई हैं और पिछले साल 49,000 घटनाएं हुई।
Britain's next prime minister faces a long list of challenges.
कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 12 साल से ब्रिटेन की सत्ता में है और इस दौरान लिज ट्रस अलग अलग पदों पर रहते हुए इस सरकार में भूमिका निभाती रहीं। यही वजह है कि कुछ आलोचक कहते हैं कि वो देश की समस्याओं की शिद्दत बढ़ने में पूरी तरह से शामिल हैं। पुरानी और पेचीदा समस्याओं की वजह से ब्रिटेन में सरकारों की उम्र छोटी हो गई है। सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही हैं। यही वजह है कि पिछले 6 साल में 4 प्रधानमंत्री सत्ता में आए। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
और अब चर्चा करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के गैर रचनात्मक बर्ताव की गई आलोचना के बारे में। जहां पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं शहबाज शरीफ को उम्मीद थी कि इमरान खान के जाने से अमेरिका पाकिस्तान के प्रति नया रुख अपनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने परस्पर विश्वास और सम्मान के आधार पर इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच रचनात्मक बातचीत का आह्वान किया है। इस्लामाबाद में अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करने वाले शहबाज शरीफ ने आपसी सम्मान, विश्वास और समझ के आधार पर दोनों देशों के बीच रचनात्मक और स्थायी बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस्लामाबाद में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बैठक के बारे में एक बयान जारी किया। इस बैठक में शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के हालात सहित द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास की समीक्षा करते हुए अमरीका के गैर रचनात्मक बर्ताव की आलोचना की। शहबाज शरीफ के शब्दों में पाकिस्तान के प्रति अमरीका के बर्ताव की परोक्ष आलोचना की गई है और इस्लामाबाद के प्रति वाशिंगटन के गैर रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण आपसी सम्मान और विश्वास की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। शहबाज शरीफ को जो پاکستانی سنسد کے ووٹ سے عمران خان کو ہٹانے کے بعد اپریل 2022 میں پاکستان کے پردھان منتری بنے. امید تھی کہ امریکہ کی مدد سے پاکستان کے معاملوں کا پرشاسن سنبھال سکتے ہیں. پچھلے اپریل کے مہینے میں پاکستان کی سنسد دوارا پردھان منتری کا پد گرہن کرنے کے لیے مددان کے پہلے گھنٹوں میں ہی انہوں نے امریکہ کے ساتھ سمبندھ وکست کرنے کے لیے اپنی ودیش نیتی کی پراتھمکتا کی گھوشنا کی تھی. شہباز شریف کو پاکستان کے پردھان منتری کے روپ میں ستا میں آئے لگ بھگ 5 مہینے کا سمے بیت چکا ہے. نہ کیول پاکستان کے ساتھ سمبندھوں کو وکست کرنے میں امریکہ کی اچھا کا کوئی سنکیت ملا ہے بلکہ واشنگٹن کے کارکرموں کے بارے میں اسلام آباد کے پردرشن کی بھی آلوچنا ہوئی ہے. پاکستان میں کئی آرتھک سمسیاؤں کا سامنا کر رہے شہباز شریف کو امید تھی کہ عمران خان کے جانے سے امریکی سرکار ان کے دیش کے پرتی نیا رخ اپنائے گی. عمران خان 2018 سے 2022 تک پاکستان کے پردھان منتری کے روپ میں اپنے کاریکال کے دوران یا وپکش میں رہتے ہوئے ہمیشہ ہی پاکستان اور افغانستان کے پرتی امریکہ کی یوجنا کی آلوچناتمک درشٹی کون رکھتے تھے. یہی کارن ہے کہ عمران خان کے پاکستان سرکار کے پرمکھ کے روپ میں 4 سال کے کاریکال کے دوران امریکہ کے ساتھ اس دیش کے سمبندھ اچھے نہیں تھے.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. بھارت کی راجدھانی نئی دلی میں استھت ایران کے سانسکرتک کیندر میں آشورا سندیش اور اسلامک ایکتا کے وشے پر ایک سنگوشتی کا آیوجن ہوا جس میں بڑی سنکھیا میں شیعہ اور سنی دھرم گروؤں کے علاوہ بدھی جیویوں اور سماجک کارکرتاؤں نے بھاگ لیا. اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں دلی سے ہمارے سنواددتا شمشاد کاظمی.
امام حسین علیہ السلام و نہضت آشورا میتواند محور.
دلی استھت ایران کے سنسکرتک کیندر میں ایران اور بھارت کے پرسدھ شیعہ سنی دھرم گروؤں اور بدھی جیویوں کی اپستھتی میں آشورا سندیش اور اسلامک ایکتا پر سنگوشتی آیوجت ہوئی. اس سنگوشتی کو سمبودھت کرتے ہوئے شیعہ اور سنی دھرم گروؤں نے آشورا کے سندیش کو مسلمانوں اور سبھی دھرموں کے بیچ ایکتا اور بھائی چارے کا آدرش بتایا اور کہا کہ کربلا کی تراژدی اسلامی اور مانویہ اتہاس کی ایک ایسی مہتوپورن گھٹنا تھی جس نے سماج پر گہرا پربھاؤ ڈالا اور آشورا کے سندیش نے پوری مانوتا کو آزادی, نیتک مولیوں کی رکشا, نیائے اور ایکتا اور سمرستا کا پاٹھ پڑھایا اور لوگوں کے دلوں میں کرانتی پیدا کی, اور یہی کارن ہے کہ آج کربلا دلوں پر راج کرتی ہے. ایران کی انتراشٹریہ دھارمک سنستھا تقریب مذاہب اسلامی کے مہا سچیو ڈاکٹر حمید شہریاری نے سامراجی شکتیوں کی اسلام دشمنی کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ یدپی اسلام پریم اور بھائی چارے کا دھرم ہے جس کا ہنسا اور آتنکواد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن سامراجی شکتیاں دنیا کے سامنے اسلام کا خراب چہرہ پیش کرتی ہیں تاکہ دنیا والوں کو اسلام سے نفرت ہو اور اسلاموفوبیا دوارا لوگوں میں بھے پیدا کیا جائے. انہوں نے آئی ایس آئی ایس کی بربرتا کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایس آئی ایس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جسے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا. یہ سنگٹھن اب سماپت ہو چکا ہے اور وشو کا کوئی بھی اسلامک دیش اس کا سمرتھن نہیں کرتا. ایران کے ایک دوسرے سنی دھرم گرو مولوی اسحاق مدنی نے کہا کہ اسلامک سمودائے میں بہت سی مانیتائیں ایک جیسی ہیں جس کے آدھار پر ہم ایکتا کے راستے پر چلتے ہوئے ایکتا اور بھائی چارے کی شمع روشن کر سکتے ہیں. اس سنگوشتھی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں ہوئی شہادت کے سندیش کو, جو پوری مانوتا کے لیے ہے, عام کرنے کی آوشیکتا پر بل دیا گیا اور کہا گیا کہ کربلا کے سندیش کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے جو ہمیں جہالت اور گمراہی سے باہر نکل کر ایک سبھی سماج کی استھاپنا کے لیے پریرت کرتا ہے.
میرا یہ یقین ہے کہ یہ جو پیغام ہے, پیغام عاشورا, اس کی برکت سے نہ صرف ہم اہل مسالک بلکہ تمام مذاہب کے نمائندگان حسینی پرچم کے زیر سایہ اور کربلا کے حادثہ عظیمہ کی روشنی میں جو اس سے اجالے پھیلے ہیں, اس کی برکت سے ہم پورے عالم کو اس سے متاثر کر سکتے ہیں.
اس سنگوشتی کے سماپن پر کربلا کی گھٹنا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ویکتتو پر وبھن دھرموں کے لیکھکوں کی لگ بھگ 35 کتابوں کا ویموچن ہوا. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، اب پیش ہے کارکرم آج کی بات۔
آج کی بات۔
श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के आर्थिक विकास और उससे जुड़ी बहसों की। भारत के मीडिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आने वाले आंकड़ों के आधार पर यह खबर और जोरदार बहस शुरू कर दी कि भारत की इकोनॉमी में रफ्तार लौट आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP 13.5% बढ़ी। अप्रैल से जून के बीच देश में हुए कुल कारोबार के हाल पर ये ताजा अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने जारी किया। भारत के मीडिया ने यह खबर उत्साह के साथ प्रसारित की।
अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। महामारी को मात देकर भारत बना है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
भारतीय मीडिया में इस बात का उल्लेख भी उत्साह के साथ किया गया कि देश ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वां स्थान हासिल कर लिया है।
GDP के मामले में भारत ने साल 2022 की पहली तिमाही में ही अपनी बढ़त बनाए रखी, यानी इस दौरान भी उसकी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से आगे बनी रही। ब्रिटेन को लगा 300 साल का सबसे बड़ा झटका।
CSO के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा दामों के हिसाब से, यानी करंट प्राइस की गणना पर, देश की अर्थव्यवस्था का कुल आकार जून के अंत में 64.95 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये आंकड़ा 51.27 लाख करोड़ रुपए था। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पिछले साल और इस साल की बढ़त का आंकड़ा साथ रखकर रंगीन तस्वीर पेश की गई। आंकड़ा वित्त मंत्रालय की तरफ से भी दिया गया है। पार्टी के समर्थकों ने तो तरह तरह से साबित करने की कोशिश की कि कैसे भारत दुनिया में सबसे तेज तरक्की कर रहा है और कैसे पिछली सरकार के मुकाबले में ये सरकार अर्थव्यवस्था को बेहतर अंदाज में चला रही है। कुछ अर्थशास्त्री भी वर्तमान इंडिकेटर्स को काफी उत्साहजनक मानते हैं। जाने माने अर्थशास्त्री प्रसन्नजीत बासु कहते हैं कि मौजूदा आंकड़े बड़े उत्साहजनक हैं और इनसे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है।
Well, I think they say that the economy is in rude health at a time when most of the world is struggling with high inflation and a growth slowdown. India's economy is in great shape, and particularly the most positive feature of the numbers is the strength of fixed investment spending.
Lekin baat ye hai ki ye vishay itna saral bhi nahi hai. Is bare mein alag alag raaye samne aa rahi hain. Mashhoor arthshastri Madhuri Arora ka maujooda aankdon par mila jula jaiza aur nazariya hai.
Print is quite a mixed bag. As I said, it's largely led by service sector rebound, because this is the first time you're actually opening up fully as an economy. So one doesn't really know how much of it is actually a pent up impact or how much it is a real, you know, uptick in the service sector, which could sustain from here on. Part of it is also visible in the private sector print in the expenditure side, which sort of spilled on to show that, the consumption side of especially urban sector has improved in this quarter.
इस वक्त एक तस्वीर ये है जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और दूसरे कई नेता दिखा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले की स्थिति से बेहतर हालत में लौट आई है। ये बात अपने आप में सही है कि अप्रैल में जून 2019 में GDP 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जो कोरोना के तुरंत बाद 2020 में 27.03 लाख करोड़ रुपए तक गिरने के बाद पिछले साल 32.5 5.3 लाख करोड़ रुपए और अब 36.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफी है? ये आंकड़े 13.5% की विकास दर दिखाते हैं, जबकि अर्थशास्त्रियों को ये आंकड़ा 15 से 16% के बीच आने की उम्मीद थी, यानी ग्रोथ का आंकड़ा बाजार की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान था कि भारत की जीडीपी इस तिमाही में 16.2% बढ़ेगी, जो अनुमान अब आया है वो इससे 2.7% कम है। इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा अलग बात कहते हैं। उनका मानना है कि जो आर्थिक स्थिति है वो कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज नहीं है।
सेलिब्रेट करने की तो कोई बात मुझे लगती नहीं कि अगर आपकी कि 2021 में आपकी अर्थव्यवस्था संकुचित होती है 6.6% पे, और फिर उसके बाद एक साल में क्योंकि बेस इफेक्ट है, बेस गिर गया तो आपकी अर्थव्यवस्था मतलब आपकी विकास दर और बढ़ जाती है, और उसके बाद के क्वार्टर में आप अगर आप उस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं जिसमें कोविड चल रहा था पिछले साल, तो इस साल तो आपकी अर्थव्यवस्था बढ़िया ही है, उसमें क्या ताज्जुब की बात है। तो कुछ भी सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, मगर मैं कुछ आंकड़ों वाली बात पे 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये दोहराना बहुत जरूरी है कि ये जो अभी हुआ है कि हम यूके से आगे निकल गए हैं, ये क्वार्टरली एस्टिमेट के आधार पे है, यानी कि तिमाही विकास दर के आधार पर। हमारे देश में क्योंकि हम विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है, हमारे देश में ये तिमाही के जो एस्टिमेट जीडीपी के आते हैं वो हमेशा प्रोजेक्शन के, अधिकतर प्रोजेक्शन के आधार पे होते हैं।
पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े सामने रखकर देखने पर पता चलता है कि कोरोना के पहले से तुलना की जाए तो जीडीपी पिछले 3 साल में मात्र 3% के आसपास ही बढ़ी है, जो निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है। आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि उनके विचार में आज भी भारत की अर्थव्यवस्था गिरावट पर है और विकास दर जीरो पर है।
2019 में भी ये कहा जा रहा था कि हम ब्रिटेन से आगे निकल गए हैं या निकल जाएंगे, और फिर 2020 में कोरोना काल में सबसे भारी गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था की हुई। अब उससे अर्थव्यवस्था बाहर निकली है, लॉकडाउन से वगैरह अर्थव्यवस्था द्वारा थोड़ा पटरी पे आ रही है। अभी हमारा जो जीडीपी है वो 2019 की लेवल से अभी 3.5-4% अब ज़्यादा हुआ है 3 साल बाद, समझिए। लेकिन जो ये आंकड़े हैं मुझे उसमें बहुत संदेह है, क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो क्वार्टरली आंकड़ों में गिना ही नहीं जाता है सिवा कृषि को छोड़ के, और वहां पे ही सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। तो अभी सरकार कह रही है कि हमारी ग्रोथ रेट 7%, 7.5% के आसपास है, और आईएमएफ ने भी वो मान लिया, क्योंकि आईएमएफ तो डेटा कलेक्टिंग एजेंसी है नहीं, तो जो सरकार कहती है उसी के डेटा को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो भी मान लेते हैं उसको। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था 7-7.5% बढ़ रही है, जबकि जो ब्रिटेन में है वहां पे एक तरह से रिसेशन सा है, तो इसलिए फिर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो ब्रिटेन से आगे फॉर्मली। लेकिन मेरा मानना है हमारी भी अर्थव्यवस्था गिरावट पे है। अगर असंगठित क्षेत्र को अगर हम अलग से नापें और उसको फिर संगठित क्षेत्र के साथ जोड़ के देखें तो हमारी भी अर्थव्यवस्था इस समय 0% नेगेटिव पे है, ना कि पॉजिटिव में है।
टीकाकार कहते हैं कि चिंता की बात यह है कि दुनिया के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी आज भी कोरोना के पहले वाली स्थिति में नहीं पहुंची। दुनिया की 16-17% आबादी वाला देश भारत अभी तक दुनिया की जीडीपी में लगभग 3% हिस्सेदारी के आसपास ही जोड़ पाता है। दूसरी बात यह है कि खुदरा महंगाई भले ही काबू में दिख रही हो, असली महंगाई अब भी बेकाबू है। महंगाई के मुद्दे पर वैसे भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली के दौरान पार्टी नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि नफरत से लोग बंटते हैं, देश बंटता है, देश कमजोर होता है। बीजेपी संघ के नेता देश को बांटते हैं, जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। नफरत पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर। ये डर बढ़ता जा रहा है, इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप चले जाइए आज किसी भी दुकानदार, मजदूर और किसान से पूछ लीजिए कि यूपीए और आज के समय में क्या अंतर है। यूपीए की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून दिए। मजदूरों के लिए यूपीए ने मनरेगा दिया और मोदी जी ने संसद में मनरेगा के लिए बोला कि ये बेकार है। आज उन्हें मनरेगा देना पड़ रहा है। संतोष मेहरोत्रा आर्थिक क्षेत्र में भारत के ब्रिटेन से आगे निकल जाने की बात को भी अलग नजर से देखते हैं। उनका दावा है कि जो कुछ हुआ है उसके लिए मौजूदा सरकार को कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता।
सारे लीग टेबल्स में, दुनिया भर के लीग टेबल्स में होता है, कोई हमसे बेहतर कर गया, कोई हमसे नीचे उतनी परफॉर्मेंस नहीं रही तो हम ऊपर उठ जाते। खैर, अब हम आते हैं आपके जो दीर्घकालीन परिदृश्य को। देखिए, पिछली वाली सरकार भी बड़ा शोर मचा सकती थी कि हम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, और हम 20 साल से लार्ज इकोनॉमीज में सेकंड फास्टेस्ट थे चीन के बाद, 20 साल से। तो इस सरकार का जो ढिंढोरा पीटना है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग, अरे भाई, चीन की विकास दर गिर गई है, और चीन की विकास दर उन्होंने जानबूझ के गिराई है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था में इम्बैलेंसेस डेवलप हो रहे थे। मैं उस विषय में नहीं जाता। यहाँ मुद्दा ये है, क्योंकि ये ध्यान रहे कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और सेकंड फास्टेस्ट जो चीन और हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, ये ध्यान रहे कि पिछले 20 साल से ये प्रतिस्पर्धा फास्टेस्ट, चीन तो फास्टेस्ट 30 साल से चल रहा था, और फास्टेस्ट इस प्रकार चला 30-35 साल कि उन्होंने गरीबी भी कम कर ली, जबकि उन्होंने हमारे स्तर से शुरुआत की थी 1980 में। अब हमने 5 गुना बड़ी इकोनॉमी हो गए, प्रति व्यक्ति आय हमारे हमसे 5 गुना हो गई है, तो हम चीन से तो बराबरी करने सकते हैं, हम यूके से क्या बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मतलब इसमें इस सरकार का कोई श्रेय नहीं।
प्रोफेसर अरुण कुमार नोटबंदी, जीएसटी और दूसरे कई कारण गिनवाते हुए डेटा कलेक्टिंग के संदर्भ में बदलाव लाने की बात करते हैं।
हमारे अर्थव्यवस्था में 2016 से कई शॉक्स आए हैं। आज जब शॉक्स आते हैं तो पुरानी मेथोडोलॉजी सही नहीं होती है, क्योंकि शॉक्स का मतलब है जो पुराने पैरामीटर होते हैं उसके आधार पर हम जो डेटा नहीं कर सकते हैं। तो जैसे क्वार्टरली डेटा में क्या होता है कि पास्ट से प्रोजेक्शन होता है फ्यूचर में। अब जब शॉक बीच में आ गया तो आप प्रोजेक्शन सही नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि असंग्रह क्षेत्र पे खास बुरा असर पड़ा है नोटबंदी का, और जो जीएसटी जो जिसने बहुत बुरा असर डाला है, फिर उसके बाद जो एनबीएफसी क्राइसिस आया जिसकी वजह से असंग्रह क्षेत्र पे बुरा असर पड़ा, और फिर लॉकडाउन का। ये खासकर इस समय हमारा संग्रह क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि असंग्रह क्षेत्र से डिमांड शिफ्ट हो गई है, तो ये असर पहले नहीं थे। तो इसलिए हमें अपना जो डेटा है वो, मैं कहूंगा कि उसको हमारी मेथोडोलॉजी को बदलना पड़ेगा।
राजनीतिक बहस तो अपनी जगह, अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है तो ये काफी संघर्ष वाला मैदान है और बड़ी मेहनत की जरूरत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने कार्यक्रम सुना आज की बात। कार्यक्रम को पेश किया अहमद अब्बास ने। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir। और अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम, सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में भी हम एक और सफल ईरानी महिला से आपको परिचित कराएंगे।
इक्कीसवीं शताब्दी में महिलाओं ने न सिर्फ धन अर्जन करने में अपनी भूमिका दर्ज कराई, बल्कि भावी संगठनों का निर्माण करते हुए अभिकर्ताओं का स्वरूप भी परिवर्तित किया है। हाल के वर्षों में महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। विगत 3 दशकों में महिलाओं ने कॉरपोरेट जगत में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। सामाजिक नैतिकता पूरा सम्मान करते हुए घर तथा कार्यस्थल पर स्वयं को सफल उद्यमी एवं कार्यकारी व्यवसायिकों के रूप में साबित किया है। ईरान की महिला उद्यमी वर्ग ने नए उद्यमों को आरंभ करने एवं उनका सफलतापूर्वक संचालन करने में बेहतर कार्य निष्पादन के कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। लेकिन आज हम अपने कार्यक्रम में किसी उद्यमी महिला की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज एक ऐसी सफल ईरानी महिला की बात करने जा रहे हैं जिनको दुनिया के ज्यादातर देशों के नेता और बड़ी संख्या में आम लोग भी जानते हैं। इसकी वजह यह है कि यह सफल ईरानी महिला देश के विदेश मंत्रालय की पूर्व प्रवक्ता के साथ साथ ईरान का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की पहली महिला राजदूत भी रही हैं।
दोस्तों, एक राजनयिक किसी राज्य अथवा संयुक्त राष्ट्र जैसे किसी अंतर राष्ट्रीय सरकारी संस्थान द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है जिसका काम या एकाधिकार राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कूटनीति का संचालन करना होता है। राजनयिकों के मुख्य कार्य भेजने वाले राज्य के हितों और नागरिकों का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करना, रणनीति समझौतों की दीक्षा और सुविधा प्रमाणित करना, संधियों और सम्मेलनों, सूचना का प्रसार, व्यापार एवं वाणिज्य प्रौद्योगिकी और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना होता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अनुभवी राजनयिकों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया का सबसे बड़ा राजनयिक मंच के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधन और बातचीत कौशल में उनके अनुभव के लिए किया जाता है। राजनयिक विदेशी सेवाओं और दुनिया के विभिन्न देशों के राजनयिक निकाय के सदस्य होते हैं। राजनयिक राज्य के किसी भी विदेशी संस्थान का सबसे पुराना रूप है, जो सदियों के विदेश मंत्रियों और मंत्रिस्तरीय कार्यालयों द्वारा पूर्ववर्ती हैं। उनके आम तौर पर राजनयिक प्रतीक्षा होती है और उनकी आधिकारिक यात्रा में वे आम तौर पर एक राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर राजनयिक दूत संप्रभु राज्य या देश द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं जो अन्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ईरान के कूटनयिकों और राजनयिकों को दुनिया भर में बेहतरीन कूटनयिकों में से एक माना जाता है। इन कूटनयिकों में एक ईरान की महिला कूटनयिक है जिनका नाम है मर्जिया अफखम और इनका जन्म वर्ष 1962 में तेहरान में हुआ था। किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति कोई ऐसी राजनीतिक स्थिति नहीं है जिसे कानून द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सके, बल्कि समाज में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति मुख्य रूप से सामाजिक होती है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक घटकों से सीधा संबंध भी होता है। ईरान में मौजूद सभी तरह के गंभीर संकटों के बीच कभी कभी आर्थिक और सांस्कृतिक संकट अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच सामाजिक बुनियादी ढांचे में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया चल रही है। ईरानी समाज एक ऐसे समाज के रूप में जो आधुनिक मानकों के बहुत करीब है, एक दिलचस्प अनुभव कर रहा है। इसका एक कारण इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान के विकास के रास्तों में पैदा की गई रुकावटों, संकटों और कठिनाइयों का इस विकास में काफी असर पड़ रहा है। अब महिलाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और संचार के स्तर में वृद्धि हुई है और इन दोनों का महिलाओं के आत्मविश्वास और उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों पर अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
निश्चित रूप से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की व्यापक उपस्थिति और भागीदारी को लोकतंत्र के अच्छे स्वास्थ्य के संकेत के रूप में माना जा सकता है और ये किसी भी समाज में बौद्धिक परिपक्वता और सामाजिक चेतना के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। महान इस्लामी क्रांति की सफलता के 40 साल से अधिक वर्षों के बीच जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि आज के समय में महिलाओं ने कई क्षेत्रों में पुरुषों से श्रेष्ठता छीन ली है और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भाग लेकर कूटनीति, संसद और कानून में समाज को व्यवहारिक रूप से आश्वस्त किया है कि राजनीति में वे सक्षम हैं और राजनीतिक विकास के लिए स्तंभ के रूप में खुद को समाज के सामने पेश किया है।
मर्जिया अफखम ने इस्लामिक आज़ाद विश्वविद्यालय से क्षेत्रीय अध्ययन में मास्टर डिग्री और तेहरान में अल्लामा ताबाताबाई विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। 31 सितंबर 2013 में जब इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री के पद पर मोहम्मद जवाद जरीफ थे, उस समय मर्जिया अफखम ईरान की पहली विदेश मंत्रालय की महिला प्रवक्ता बनी थी। वह ईरान की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए राजदूत के पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। ईरान की पहली महिला राजदूत मर्जिया अफखम वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक मलेशिया में ईरान की राजदूत रही हैं।
दोस्तों, मर्जिया अफखम इस बारे में कहती हैं कि पेशेवर रूप से अगर देखा जाए तो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता होना कोई महिला या पुरुष में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि न तो हमारे काम का माहौल बदला है न ही पत्रकारों के विचार। एक महिला के रूप में न ही प्रवक्ता होने के नाते न ही पत्रकारों की संख्या कम हुई है और न ही हमारे काम का तरीका बदला है। पेशेवर तरीके में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में देखा जाए तो सभी क्षेत्रों और जनता की राय ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ईरान के बाहर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। पश्चिमी देशों के लिए ये दिलचस्प था कि इस्लामी गणतंत्र ईरान में ये पद, जिसके दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में जानने वाले और सुनने वाले हैं, एक महिला को पेश किया गया था। दूसरी ओर दुश्मनों द्वारा ईरान के खिलाफ ये दुष्प्रचार और अफवाहें फैलाई जाती रही हैं कि ईरान में कुछ नौकरियों में और पदों पर महिलाओं की नियुक्ति प्रतिबंधित है, लेकिन मेरी नियुक्ति ने सबके मुंह बंद कर दिए। अगर किसी में प्रतिभा है तो उसे इस्लामी गणतंत्र ईरान में बिना किसी लिंग के भेदभाव के उसे अवसर प्रदान किया जाता है।
मर्जिया अफखम ईरान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता और राजदूत रहने के अलावा सूचना और प्रकाशन की उपनिदेशक, सूचना और प्रेस की महानिदेशक और विदेश मंत्रालय में सार्वजनिक कूटनीति की महानिदेशक भी रही हैं। इसके अलावा भी वह बहुत सारे पदों पर रह चुकी हैं, जिनमें मास मीडिया की प्रमुख, विदेश मंत्री की सलाहकार, सार्वजनिक और राजनयिक मीडिया केंद्र की प्रवक्ता और अध्यक्ष के रूप में उन्हें समाज में एक सफल महिला के तौर पर पहचान मिली है। मर्जिया अफखम ने यह दर्शाया कि ईरानी महिलाओं में वे तमाम विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके बारे में आधुनिक दुनिया में बात की जाती है। साथ ही दुनिया भर में ईरानी महिलाओं के बारे में पेश की जाने वाली नकारात्मक छवि को भी उन्होंने अपने प्रयासों से विफल बना दिया।
दोस्तों, जिस प्रकार दुनिया में आज महिलाओं की आस्थाओं और उनके अनुभवों के बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए ईरानी महिलाओं की स्थिति दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से है। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान की महिलाओं ने दुनिया के सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया है। कूटनीति के माहौल ने मर्जिया अफकम को यह अवसर प्रदान किया कि वो एक ही समय में प्रवक्ता जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी और सार्वजनिक कूटनीति के कार्यालय की प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम रहीं।
मर्जिया अफकम ने विदेश मंत्रालय के ही अपने एक सहयोगी के साथ विवाह किया था। यह पूछे जाने पर कि क्या वह काम और जीवन की जिम्मेदारी को एक साथ उठा पा रही हैं या नहीं, इसके जवाब में वह कहती हैं कि इसके बारे में मेरे पति से मालूम करें। हालांकि मैं और मेरे पति दोनों ही विदेश मंत्रालय में काम करते हैं और यह हमारा सौभाग्य है। वह अच्छी तरह से हमारी जिंदगी की स्थिति को समझ सकते हैं। कभी कभी हम इस बारे में बात करते हैं। वह बातों ही बातों में कहते हैं कि तुम फिर विदेश मंत्रालय की जबान हमसे बोल रही हो। वैसे मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं परिवार को अपने लिए प्राथमिकता बनाने की कोशिश करूं। आज ईरान में मुस्लिम महिला एक गौरवान्वित और सम्मानित हस्ती है।
दोस्तों, सुश्री अफगम के विचार में महिलाओं को अपनी इस्लामी पहचान को बाकी रखते हुए सभी आध्यात्मिक, पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सबसे आगे होना चाहिए। वो कहती हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं में मौजूद क्षमताओं और ईरान के नेतृत्व की स्थितियों को देखते हुए ये उम्मीद की जाती है कि हम आने वाले दिनों में महिलाओं की सक्रियता और उपस्थिति और अधिक देखेंगे। ईरानी महिलाओं का भविष्य पूरी तरह उज्ज्वल है। ऐसी बहुत सी ईरानी महिलाएं हैं जिनमें ये क्षमताएं पाई जाती हैं कि वो दुनिया भर में ईरानी महिलाओं की तस्वीर बनकर उभरें।
तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपने सुना कार्यक्रम सफल महिलाएं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir.ir। हमारी वेबसाइट है partstoday.com/hi। तो दोस्तों, हमारी साइट पर आप विजिट के लिए ज़रूर आइएगा। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की यह सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। खुदा हाफिज़।